الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبى والصقر الأنزع البطين الأشرف المكين الأشجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل الكاسطين وقاتل الماركين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأول العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب ذو الفكار أخي النبي الأبرار أبو الآل أطهار قسيم جنة والنار أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العلية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورا أم الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرى الفاطمة التقية النقية الزهراء اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والعاثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان محمد غدير سے ظہور تک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے موقع ملا ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے اس موضوع کو آگے بڑھائیں میں شروع کے کتاب میں کچھ القاب ضرور لیتا ہوں وہ میری عادت ہے اس کی وجہ یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں لمبا ہو جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ عامیانہ سا ہو جائے خاص موقع پہ ہونا چاہیے بالکل صحیح کہتے ہیں لیکن میری تو یہی کوشش ہے کہ ہر بچہ ان القاب کو رٹ لے بس یہی چاہتا ہوں میں کہ یہ ہر وقت ان کے ذہن میں رہیں کیونکہ یہی آپ کی معرفت ہے یہی آپ کی نجات ہے یہی آپ کی حیات ہے اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے مجلس تو ہو چکی ہے مجلس ہو چکی ہے اب تمہید بس تھوڑی سی گفتگو کریں گے ورنہ کہہ دیا جو کہنا تھا سارے فضائل اسی میں تھے سارے مصائب اسی میں تھے اور اگر جو دیکھیے یہ تو القاب ہیں یہ نور ہے یہ کوئی عام نام نہیں ہے یہ اسماء جو ہیں یہ نور ہیں تو جب یہ ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے میرے منہ سے جاری ہوتے ہیں تو ایئر میں تو ویوز آ رہی ہیں ساؤنڈ ویوز جب یہ ساؤنڈ ویوز آتی ہیں آپ کے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں تو آپ کے کان کا پردہ ہلتا ہے اندر پہ تھوڑا سا پانی ہلتا ہے اس کے اندر سیلز ہلتے ہیں جب وہ سیلز ہلتے ہیں تو پھر کوکلیئر نرو آپ کے آڈیٹوری سینٹر تک پہنچاتی ہے وہاں پہ آپ کا آڈیٹوری سینٹر اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ کوئی ورڈ ہے بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی ترجمہ آئے گا بعض لوگوں کے ذہن میں نہیں آئے گا جو ترجمہ جانتا ہے وہ بھی خوش ہوگا جو نہیں جانتا وہ بھی خوش ہوگا سوال یہ ہے کہ جو نہیں جانتا पड़ा कि इसका मतलब क्या है अरबी में, वो क्यों खुश हो रहा है, वो इधर खुश नहीं हो रहा। लेकिन जब ये ऑडिटोरी सेंटर से नूर बन के यहां से उतरता है, जरूरी है उतरा जाए, अगर यहां पे अटक जाए तो फिर बख बख होता है। गदीर के दिन भी कोई बख बख कर रहा था। अगर यहां पे निगल लिया जाए तो फिर इस कल्ब में पहुंचता है जो आपके नफ्स के सेंटर में है। और ये जो कल्ब है ना, ये सिर्फ नूर लेता है, नूर। लेकिन शर्त है मोमिन का कल्ब हो, शर्त है उसका कल्ब हो जिसने विलायत का इकरार किया हो, शर्त ये है कि जो पहली गदीर थी उसमें भी इकरार किया हो, दूसरी गदीर थी उसमें भी इकरार किया हो, फिर तीसरी गदीर में भी इकरार किया हो, तब जाके उतरता है। जब इस कल्ब में आता है ना अली का नाम, तो फिर मोमिन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। यार हाँ, अगर खुशी नहीं हो किसी को तो जाहिर है उसके लिए भी फॉर्मूलाज हैं, उसका भी उसके भी तरीके हैं, उसमें भी देखना पड़ेगा, डायग्नोसिस करनी पड़ेगी कि क्या मसला है, कहाँ पे मसला आ गया। मैंने तो यही कहा था कि जो अली के फजाइल पे खुश ना हो, बड़ी आसान सी डायग्नोसिस है, ना सीटी कराने की ज़रूरत है, ना अल्ट्रासाउंड, ना कोई जेनेटिक टेस्ट, बस जाके गिज़ा पे गौर कर लीजिए, बस यही देखना है। गिज़ा पाक है तो अली ज़रूर जज्ब होगा। गदीर है मौजू, गदीर से जहूर तक, गदीर से जहूर तक, यानी कि गदीर हुई, अब जहूर होना है, और जहूर होना ही गदीर की वजह से है। अगर गदीर पे सब गदीरी मान लेते तो फिर जहूर की जरूरत नहीं थी, ना गैबत की जरूरत थी, ना करबला की जरूरत थी, ना इसकी। सारा मामला कहाँ पे आया? बस यहीं पे आया। कहाँ अटका आके? कि अली को नहीं मानना। अली को मानने में क्या मसला है? अल्लाह को मान लिया, रसूल को मान लिया, लेकिन अली को नहीं मान रहे। क्यों? अल्लाह ने ऐसा निज़ाम क्यों बनाया? ना मैंने बनाया ये निज़ाम, ना आपने बनाया ये निज़ाम। कहते हम अली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, हम क्या देंगे इंपॉर्टेंस? जिसको अल्लाह इंपॉर्टेंस दे दे उसको हम कुछ नहीं दे सकते। हम कहा अली को ज़्यादा बढ़ा दिया, हम क्या बढ़ाएंगे? जिसका नाम अल्लाह ने ही बुलंद रखा हो, ज़रा उसको बुलंद करके तो दिखाओ। अल्लाह अकबर। तो पता चल गया कि कोई ना कोई राज है इसके पीछे, सारा मसला ही विलायत का आ जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि बाज़ लोगों के दीन में विलायत है ही नहीं, है मुसलमान, सजदा कर रहे हैं अल्लाह को, विलायत पूछोगे कहेंगे पता नहीं कोई चीज़ है, कोई चीज़ है। इन लोगों की शिया करते रहते हैं वली वली विलायत विलायत, हमें नहीं पता इसका क्या मतलब है, ये तो हमने कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखा क्या मतलब? कुरान में अल्लाह ने अपने आप को एक ही स्टेटस दिया है, या मौला कहा है या वली कहा है, यानी कि आपने हर चीज़ ले ली, लेकिन जो अल्लाह ने स्टेटस लिया था वो नहीं लिया आपने। विलायत है क्या? जब आप इसको डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? किसी से कहेंगे, कोई पूछ लेगा आपसे, भाई ये क्या है विलायत, जिसके पीछे आप लोग मरे जाते हैं, जिस पे आप इतना खुश होते हैं, जिस पे आप फख्र करते हैं, जिस पे आपकी निजात है, और आप कहते हैं कि अगर विलायत को नहीं माना तो कुछ नहीं माना, यानी कि कोई चीज़ ही नहीं मानी, ना रसूल को माना, ना अल्लाह को माना, अगर विलायत नहीं मानी तो। देखिए अली का जो मकाम है, ये बहुत मुश्किल स्टेटस है, बहुत मुश्किल स्टेटस है, क्योंकि दिस इज नाउ द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, और इमाम अली उस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे खड़े हैं। वो जानते हैं वो कसीम जन्नत व नार हैं, जो उनको मानेगा जन्नत में, जो उनको नहीं मानेगा जहन्नुम में। दिस इज अ बिग बर्डन, मतलब कि हम तो सोच भी नहीं सकते, ये तो वही जाने जो वली खुदा है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्यों इतना जरूरी है विलायत को मानना, और क्यों अगर विलायत को नहीं माना तो अल्लाह को नहीं माना? यानी कि अगर अली को नहीं माना तो फिर नबी को नहीं माना। कह तो रहा है नबी को माना लेकिन माना नहीं है, कह तो रहा है अल्लाह को माना लेकिन वाकया नहीं माना। अल्लाह खुद कह रहा है कि ये कहते हैं कि ये ईमान रखते हैं योमल आखरा पर मुझ पे, वो मैं हूं भी मोमिनीन। अल्लाह कहता है ये गवाही देते हैं, कुरान में अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे हबीब, ये गवाही देते हैं कि आप मेरे नबी हैं, मैं जानता हूं कि आप मेरे नबी हैं, और मैं अल्लाह गवाही देता हूं कि ये सब मुनाफिकीन झूठे हैं। यानी कि जिनके झूठ पे अल्लाह गवाही दे रहा हो, थोड़ी पॉलिटिकल करेक्टनेस हो जाती है। या इलाही, आज का शिया तो आके कहता कि ए अल्लाह इस तरह ना कर, देखो वो गवाही तो दे रहे हैं, बज़ाहिर तो कह रहे हैं ना, इस तरह पोल ना खोलो, इस तरह इनको मुनाफिक मत कहो, इस तरह इनको झूठा मत कहो, ये मान तो रहे हैं। कहेंगे नहीं झूठ है, झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि जिसने अली को नहीं माना उसने रसूल को नहीं माना, जिसने रसूल को नहीं माना उसने अल्लाह को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? क्योंकि अल्लाह वो अल्लाह है जिसने अपने हबीब को भेजा, और हबीब वो हबीब है जिसने अली को पेश किया गदीर के दिन। अब आपने वो अली नहीं लिया तो आप उस नबी को मान ही नहीं रहे, आपने अपनी तरफ से कोई नबी बना लिया है। आपका नबी और है, अली वाला नबी और है। देखिए, आप जिस नबी को मान रहे हैं वो तो वो है कि कभी कोई गलती हो जाती है, कभी नहीं होती है, कभी कहते हैं कि मिंबर पे जो कहूंगा वो सही है, मिंबर से उतर के जो कहूंगा हो सकता है सही ना हो, कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ हो जाएगा। जो नबी अल्लाह ने भेजा था उसने तो अली को पेश किया था। जो नबी हम मानते हैं वो तो कामिल है, वो तो परफेक्ट है, वो तो नूरुल वाहिद है, वो तो नूरुल असल है, कि जब अल्लाह ने चाहा कि वो पहचाना जाए तो उसने खल्क किया जो उसने किया, और उसने कह दिया कि हबबतु अन उरफा खलकतु मा खलक। ये तो वो हदीस है जो हर मसलक मानता है, किसी को इस पे एतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अली बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें अली के अलावा कुछ है नहीं। अल्लाहु अकबर। हबबतु अन उरफा खलकतु मा खलक, कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने खल्क किया जो मैंने किया। अब जब चाहा के पहचाना जाए तो पहचान कैसे होगी और किसकी पहचान होगी? पहचान अल्लाह की करनी है ना। अल्लाह चाह रहा है कि वो पहचान आ जाए, ठीक है। अगर हम फर्ज कर लें कि अल्लाह चाह रहा है कि वो पहचान आ जाए, फर्ज कर लीजिए, ये इसकी गुफ्तगू लोअर टीयर वाली है, अभी ऊपर नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, बस इतना ही। लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा कि वो पहचान आ जाए तो उसने खल्क किया जो भी उसने किया, और आप तो हर रोज पढ़ते ही हैं इन्नी मा खलक्तु समा अमनियतम वला अर्दम मधिया वला कमरम मुनीरम वला शमसमुदिया वला फलक यदूरु वला बहर यजी वला फुल्क यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खमसतिल लदीन हुम तहतल किसा। अल्लाहुम सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जब चाहा के पहचाना जाए, और कह रहे हुब, वही हुब है, देखो सब कुछ खल किया इनकी हुब में, अब अल्लाह चाहता है क्या कि वो पहचाना जाए, तो उसने क्या किया? अहले बैत को पेश कर दिया। पेश नहीं किया, पहले उनका वजूद आया, यानी कि नूर आया। नूर वो थे पहले से, लेकिन उस नूर में नहीं थे जिसको नूरुल असल कहते हैं। क्यों पहले से थे? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाले। अल्लाह ने बस और बस यही इरादा किया है, ये तो हम सब जानते हैं, ये आयत सबके दिल पे लिखी हुई है। अल्लाह ने बस एक ही इरादा किया। देखिए इन्नमा का मतलब ये है कि बस यही इरादा है। अब ये मत सोचिएगा अल्लाह इसके बाद कोई और इरादा करेगा, क्योंकि जो इरादा करता है और बार बार करता है कैफियत में तब्दीली है, अल्लाह की कैफियत में तब्दीली नहीं आती। अभी यही समझा रहा था कि देखिए कोई बच्चा कहता है मुझे होमवर्क करना है, उसने इरादा कर लिया, होमवर्क हो गया, इरादा खत्म हो गया, इरादा तो खत्म हो गया। अब इरादा नहीं कर रहा ना कि होमवर्क करना है। आपने इरादा किया इस मजलिस में आना है, अब आप इरादा कर रहे हैं कि इस मजलिस में आना है? नहीं, आप आ चुके, आप बैठे हैं, आपका इरादा खत्म हो गया। आप तो अपने इरादे करके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कैफियत में तब्दीली आ सकती है, लेकिन 14 का जो रब है वो जो है उसकी कैफियत में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई स्टेटस में फर्क नहीं आता। ये नहीं होता आज ये चाह रहा है, कल को ये चाह रहा है, परसों ये चाह रहा है, ये मेरी और आपकी चाहत है, उसकी नहीं है। तो फिर अगर कह दिया उसने इन्नमा इन्नमा बस यही इरादा किया, तो ये मत सोचिएगा कि इससे पहले कोई और इरादा किया था या इसके बाद कोई और इरादा करेगा। अल्लाह का इरादा तो एक ही है, जब एक ही है तो उसने इरादा कर लिया। तो फिर यही सवाल था कि कब इरादा किया, कब इरादा किया? अच्छा आप कहेंगे कि देखिए अल्लाह था, बड़ी मुद्दत तक था, उसके बाद इरादा कर लिया, तो ये तो कैफियत में तब्दीली आ गई है। 14 का रब वो नहीं है जो आज इरादा नहीं कर रहा कल को इरादा कर रहा है। बात पहुंच रही है? मुश्किल तो नहीं है, पहुंच रही है। यानी कि अजीब बात है कि अल्लाह एक ही इरादा किया, और क्या इरादा किया? लियुधेबान को मुर्रिज्स अहलल बैत, कि मार मार के युधेबा, मार के दूर करूंगा आपसे रिज्स को ए अहले बैत। यह इरादा है बस। अच्छा कब से इरादा है? जब से था। कोई कह के दिखा दे कि नहीं बाद में इरादा किया। हाय हाय, अब ये अली से अल्लाह ले रहे हम, अब हम उस अल्लाह को समझ रहे हैं जिसको अली सजदा करते हैं। ये कोई किसी और से हम रब नहीं ले रहे, ये वो रब नहीं है कि पैर जहन्नुम में डाल देगा, ये वो नहीं है, ये अली जिसको सजदा करता है वो रब है। इसको समझना है तो नहजुल बलागा पढ़िए, उस रब को समझना है। तो अब कह दिया, अब मान लिया ना, कोई कह नहीं सकता कि बाद में इरादा किया। जब से अल्लाह है जब से इरादा है, जब से अल्लाह है जब से इरादा है, तो बता दीजिए अहले बैत कब से हैं, अहले बैत कब से हैं? आप कहेंगे जब से इरादा है, जब से इरादा है, तो क्या फर्क आ गया टाइमिंग में? उस वक्त तो टाइम था ही नहीं, तो क्या कहेंगे टाइम, क्या कहेंगे आप, कहेंगे कि क्या फर्क है? फिर फर्क यही है कि वो इनका परवरदिगार है, ये उसके अब्द हैं। वो नूर अल अहद है, ये नूर वाहिद है। वो अहद है, वो इंडिविजिबल वन है, वो हर चीज का खालिक है, और ये उससे रिस्क लेके कायनात में बांटते हैं। तो जब ये हो गया तो हमने कहा वो कॉज है और ये इफेक्ट है, वो कॉज है ये इफेक्ट है। यानी कि जब एक अल्टीमेट कॉज, हर चीज का कॉज और इफेक्ट होता है ना। अब मैं इस वक्त बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? आप कहेंगे कि आपके मसल्स इस जबड़े के हरकत कर रहे हैं, और आपकी टंग हरकत कर रही है, और आपके गले के मसल चल रहे हैं। फिर मैं कहूंगा ये कॉज है, ठीक है, ये साउंड जो है और कॉज ये है, ये गला है, ठीक है, इसका कॉज क्या है? आप कहेंगे आपके मसल्स में कंट्रैक्शन हो रही है। मैं कहूंगा उसका कॉज क्या है? आप कहेंगे कि आपके सेल्स के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल आ गए। मैं कहूंगा उसका कॉज क्या है? आप कहेंगे कि आपने पहले खाना खाया था, उसमें ग्लूकोज था, आपके खून में गया, आपके सेल्स में आया, उससे एनर्जी बन गई, आपने ऑक्सीजन ली, एनर्जी बर्न हुई और आपने इस्तेमाल कर ली। उसके बाद मैं कहूंगा उसका कॉज क्या है? आप कहेंगे कि वो गंदम की फसल लगी थी, उसका कॉज ये है। उसके बाद में कहूंगा उसका कॉज क्या है? आप कहेंगे सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही थी, जो रोशनी आ रही थी उससे गंदम की फसल उग गई। उसके बाद में कहूंगा इस सूरज का कॉज क्या है, इस सूरज का कॉज क्या है? आप कहेंगे सूरज का कॉज है बिग बैंग, एक बहुत बड़ा बैंग हुआ था, उससे सब कुछ बन गया, बस बैंग हो गया, ठीक है, मान लिया, मान लिया बिग बैंग है। अब मैं आपसे कहूंगा बिग बैंग का कॉज क्या है? अब साइंस बहुत खत्म होगी, साइंस तो खत्म होगी ना, बस खत्म। अब बताइए, अब मारिफत शुरू हो रही है, अब मारिफत होगी, अब मेटाफिजिकल बात होगी, अब आपको ये आइंस्टाइन की थ्योरम से नहीं मिलेगा, अब आपको ये बाबे नजफ से मिलेगा, अली के दर पे सजदा करोगे तो मिलेगा। अब ये शुरू हो गया। अब हमने कहा इसका कॉज क्या है? इसका कॉज जो है एक एनर्जी है, एनर्जी जिसने बिग बैंग करवाया। हम कहेंगे उस एनर्जी का कॉज क्या है? कहेंगे नूरे विलायत। इस नूरे विलायत का कॉज क्या है? कहेंगे अल्लाह है। यानी अल्लाह तो अल्टीमेट कॉज है ना हर चीज का, लेकिन अल्लाह का अफेक्ट तो आप भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, ये पानी भी है, ये चादर भी है, परिंदा भी है, जो जानवर हर चीज है उसका अफेक्ट। लेकिन पहला असर क्या था, पहला इफेक्ट क्या था इस अल्टीमेट कॉज का? अल्लाह तो वो अल्लाह है ना जिसका कोई कॉज नहीं। अब उसका कोई कॉज नहीं है लेकिन उसका कोई इफेक्ट तो है। तो बस हम यही तो कहते हैं पहला इफेक्ट क्या है, हमें पहला इफेक्ट मालूम हो जाए तो बस हम पहुंच गए। क्योंकि उसने चाहा कि वो पहचाना जाए, जब उसने चाहा कि वो पहचाना जाए तो अपने पहले इफेक्ट को पेश किया है कि इसके जरिए से ही तो सब कुछ हुआ है। ये जो नूर मोहम्मदी है, ये जो नूर 14 है, नूरुल असल है, नूरुल वाहिद है, ये नूर विलायत है, ये नूर विलायत तकवीनी है, ये नूर मशीयत है, नूर कुदरत है, नूर इरादा है। अल्लाह ने एक ही इरादा किया और वो इरादा ये था कि नजासत को इनसे दूर रखे। जब ये अल्लाह ने इरादा कर लिया, अब ये सब के सब जो हैं, ये 14, अब ये अल्लाह का इरादा करेंगे। यानी कि अब जो भी इरादा होगा इनके जरिए से होगा, ताकि अल्लाह के इरादे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह ने एक इरादा किया था, उस इरादे में सब कुछ, तमाम इरादे इस नूर में आ गए, नूरे मोहम्मदी में तमाम इरादे आ गए। जब आ गए तो फिर अब अल्लाह का इरादा जानना है तो इनको देखना पड़ेगा। अगर जानना है कि अल्लाह खुश है या नहीं तो इनको देखना पड़ेगा। अब ये वो मौजजा हैं, ये वो मौजजा हैं जो एक तरफ तो ओरिजिनल कॉज हैं यूनिवर्स का, जिसका अल्टीमेट कॉज अल्लाह खुद है। कॉज एंड इफेक्ट में फर्क कितना होता है, कॉज एंड इफेक्ट में वक्त कितना आता है। यानी कि जहां आग आई वहां पे हरारत कब पैदा होती है? यानी कि कोई लम्हा है कि आग होगी आप उंगली डालेंगे और हरारत नहीं होगी? कोई लम्हा है सूरज होगा और उससे रोशनी नहीं निकलेगी? कोई लम्हा नहीं है। جب یہ دنیاوی کاز چھوٹے چھوٹے سے آپ کے چولہے پہ جلنے والے, آپ کے سولر سسٹم میں اڑنے والے ہائیڈروجن ہیلیم کا بم جو ہے سن, جب اس کا افیکٹ اتنا امیڈیٹ ہے کہ جیسے ہی کاز ہوتا ہے افیکٹ آ جاتا ہے, تو پھر اللہ تو الٹیمیٹ کاز ہے, تو پھر اس الٹیمیٹ کاز کا افیکٹ کیسا ہوگا؟ تو اب یہ ہو گیا ولایت کا ضروری ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا جب تک ولایت تک نہ پہنچے, کیونکہ وہ تو وہ ہے جس نے ولایت کے ذریعے سے سب کچھ بنایا. اور جب سب کچھ بنایا تو اس نے کہا یہ نور تو ایسا ہے مخلوق اسی کی عبادت کرنے لگ جائے گی, تو اس نور کو تھوڑا سا ہم سیپریٹ کریں. اب ایک نور محمد سے نور علوی آیا, جب یہ دو نور سامنے آ گئے تو کہا ان دو نوروں کے ذریعے سے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا, اب میری ساری مخلوق ان دو نور کے ذریعے سے سمجھ جائے گی. ایک کو کہا کہ یہ نبی بنے گا, ایک کو کہا یہ نبا بنے گا. نبی کہتے ہیں جو خبر لاتا ہے, اور نبا ہوتی ہے جو خبر آتی ہے. اب جب نبی خبر لے کے آ رہا ہے تو اس لیے تو کہا غدیر میں ایوہ الرسول بلغ, اب پہنچاؤ, اب پہنچاؤ. اب تک جو بات پہنچا رہی تھی شریعت تھی, اب تک خبر نہیں آئی تھی, یہ شریعت تھی. اب تک کیا سکھایا تھا غدیر سے پہلے, کیا سکھایا تھا آپ دیکھ لیجئے. پھر کہیں گے کہ نہیں دیکھیے یہ ولایت جو ہے, ولایت اگر اتنی امپورٹنٹ تھی کہ آخر میں کیوں آئی, پھر آخر میں کیوں آئی, پہلے آنی چاہیے تھی نا. حضرت آدم پیش کرتے مولا علی کو, میں نے کہا نبا عظیم ہے علی, نبا عظیم کہا ہے, یہ تو دعائیں ندبہ میں کہا ہے. ہم اپنے امام کے لیے روتے ہوئے کہتے ہیں این یبنا نبا العظیم, این یبنا صراط المستقیم, این یبنا امام المبین, این من یبنا من ہوا فی الام الکتاب لد اللہ لعلی حکیم. جب یہ کہتے ہیں تو علی ہے نا نبا عظیم. نبا عظیم کا مطلب ہے عظیم خبر. تو عظیم خبر آدم نہیں لا سکتے, نبی عظیم لے کے آئیں گے عظیم خبر. یعنی کہ جو علی کی معرفت رکھتا ہو وہی علی کو پیش کرے گا. اب دو ہی ہیں جو علی کی معرفت رکھتے ہیں, اللہ خود آئے گا نہیں, تو یعنی کہ نور محمدی کو ہی بھیجے گا نا. کامل ہی کامل کو پیش کر سکتا ہے, وہی پیش کر سکتا ہے جو معرفت رکھتا ہو. یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے. کچھ شہروں میں میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو علی کی معرفت رکھتے ہیں, اللہ اور رسول ان کے ساتھ. ایک اور بھی پروٹوٹائپ ہے, یہ بھی علی کی معرفت رکھتا ہے. یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے, جہاں علی کی بات سمجھ میں نہیں آتی نا, یہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ میں علی کو جانتا ہوں, میں اور اللہ اور رسول ہم تینوں جانتے ہیں, اور کیونکہ میں جانتا ہوں یہ جو فضائل علی کے ہیں یہ میں مان نہیں سکتا. یہ تیسری کیٹیگوری ہے. اب ان کا ہم کیا کریں, کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں, بس یہی کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اس میں لڑنے والی بات کوئی نہیں ہے, لڑنے والی بات کوئی نہیں ہے فضائل علی پہ بالکل نہیں. تفسیر امام حسن عسکری, امام جعفر صادق الصلاۃ والسلام, امام کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ مولا ہم جو ہیں کچھ لوگ ہیں ہمارے شہر میں, ہم ان سے دور رہتے ہیں. کیوں دور رہتے ہیں؟ وہ آپ کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے ہم مانتے ہیں. امام نے کہا اچھا تو تم کیا کرتے ہو؟ تو ہم اس سے دور رہتے ہیں, دور. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تم اللہ کو اس طرح سے مانتے ہو جس طرح سے میں مانتا ہوں؟ اللہ اکبر. کہنے لگا نہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بالکل نہیں, ہم وہ معرفت رکھ ہی نہیں سکتے جو آپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے تو میں بھی تم سے دوری اختیار کر لوں کیا, میں بھی تم سے دوری؟ کہا نہیں مولا, پھر کیا کریں ہم؟ کہا دیکھو جب تم کسی سے ملو جو علی کو وہاں نہیں رکھتا جہاں تم رکھتے ہو, تو پھر پیار محبت سے اسے سمجھاؤ, اور جان لو کہ اللہ نے تمہاری ہدایت اتنی کی ہے کہ تم اونچی سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے ہو, وہ تم سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو تم پیار سے سمجھاؤ, آگے لے کے آؤ. اگر تم نے ایسا کیا, یعنی کہ یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے مقصر کہہ کے ڈرا کے لانت بھیج کے اس کو مار پیٹ دیا, یہ نہیں. امام کہہ رہے پیار سے محبت سے, کہیں نہ کہیں تو علی ہے نا دل میں, کہیں نہ کہیں تو علی ہے. اب چاہے علی ایک ذرہ ہو چاہے سمندر ہو دل میں, احترام ہے, احترام واجب ہے. اب کہا کہ پیار سے لے کے آؤ, پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ किसी ऐसे बंदे को भेजेगा तुम्हारे पास जिस तरह से तुमने उसे प्यार से पकड़ के मारिफत की सीढ़ी में उसको ऊपर लाए थे ना, कोई तुम्हारे ऊपर होगा जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ऊपर ले आएगा। तो बस यही अपील है, मेरी अपील है कि जब भी, अगर मैं अपने लिए कहता हूं, मैं ये करता हूं, अगर कोई मुझसे आके कहे कि ये जो आपने बयान किया है फजाइल अली का मकाम ये नहीं है, तो मैं घर जाके, मैं कुछ कहूंगा नहीं उससे, मैं घर जाके मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का शुक्र करूंगा, बारे लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे वो हिदायत की है जो दूसरों को नहीं की है, बारे लाह जैसे मैं अली को समझता हूं इनको भी समझा दे। अगर कोई आके मुझसे ऐसी बात करेगा जिसमें कहेगा कि ऐसी बात है, और मैं कहूंगा हैं ये कैसे हो सकता है, अली नहीं हो सकता, अल्लाह अकबर, तो ये जुमला कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह लामहदूद है लेकिन अली उसकी दलील है लामहदूदियत की। अली दलील है, हद मत बांधना, जो अली पे हद बांधेगा वो उस दावे पे हद बांध रहा है। दावा है अल्लाह की लामहदूदियत, उसकी दलील 14 है, ये they have to be unlimited to understand his unlimitedness. इसका यार तो मैं यही करूंगा कि मैं खामोश रहूंगा, अगर मेरे समझ में ना आए बात मैं खामोश रहूंगा, फिर से घर जाऊंगा मुसल्ले पे बैठूंगा, नमाज के बाद कहूंगा बारे लाहा मैं, तूने जिस तरह मेरी हिदायत की मैंने अली को समझा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, बारे लाहा मेरी हिदायत में जरा इजाफा कर दे ताकि मैं इसको समझ सकूं, मेरे ज़र्फ़ को जरा आला कर दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे, रब शराहली सदरी, अपने सीने को कुशादा कीजिए जाके मारिफते अली आए। मारिफते अली आसानी से नहीं आती, लेकिन जहां इसका इनकार कर दिया नहीं ये नहीं हो सकता, अपने आप को डेजिग्नेट कर दिया आई एम एन अथॉरिटी ऑन अली, आई एम एन अथॉरिटी ऑन अली, और अपने आप को आगे बढ़ने से रोक दिया, ये तकब्बुर है, ये इबलीस का गुनाह था, इंशाल्लाह हम सब इससे बच के रहेंगे। अब क्या हुआ, अब गदीर कितना जरूरी हो गया, अल्लाह अकबर। देखिए विलायत जो है ये है द रीजन फॉर एवरीथिंग, विलायत है, इसका मतलब ये है अगर हमने अली को नहीं माना तो हमने विलायत को नहीं माना, विलायत को नहीं माना हमने कॉज ऑफ द यूनिवर्स को नहीं माना, इसका मतलब ये है हमने उस अल्लाह को नहीं माना जिसने कायनात को खल्क किया है। तो कौन से अल्लाह को मान रहे, इतने बिलियंस ऑफ लोग हैं कुछ, कुछ किसी मजहब के ये किस अल्लाह को मान रहे हैं, ये अपने बनाए हुए अल्लाह को मान रहे हैं, इन्होंने खुद ही एक अल्लाह बना लिया है, उसको नहीं मान रहे जिसने अपना हबीब भेजा। और जब अपना हबीब भेजा तो कितना जरूरी हो गया कि गदीर हो, गदीर है इसका ऐलान जो शुरू में हुआ था कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने खल्क किया जो मैंने किया। अब अल्लाह को हम पहचान नहीं सकते, अमीरुल मोमिनीन कह चुके ना वो इदराक में आता है, ना इल्म में आता है, ना फहम में आता है, ना तसव्वुर में आता है, ना किसी हिस में आता है, ना किसी अकल में आता है, कुछ भी कर लो उसको पा नहीं सकते, तो पहचानेंगे कैसे, उसकी चाहत के जरिए से। देखो ये देखो वो चाहता क्या है, जब तुम समझ जाओगे ना वो चाहता क्या है तो समझ जाओगे वो कैसा है, उसकी चाहत को देख लो, उसकी चाहत को 14 मासूमीन कहते हैं, उसकी चाहत है 14 मासूमीन कि उसने कहा कि ये है मेरी चाहत, अब बस इनको देख लो, इनको देख लो, इनको समझ लो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कैसा हूं। क्योंकि कोई भी हस्ती होती है ना उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो एक कलेक्शन होती है ऑफ द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद क्या है क्या नहीं पसंद है। जब एक दूसरे को जान रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं अच्छा आपको ये पसंद है, अच्छा आपको ये नहीं पसंद है, ओ यू लाइक दिस, ओ यू लाइक दैट, जितना एक दूसरे को जानते हैं उतना ही उनकी पसंद और नापसंद के बारे में मालूम होता जाता है। यानी कि अल्लाह ने अपनी आइडेंटिटी रखी पसंद और नापसंद में, पता चल गया अल्लाह कैसा है इससे कि वो पसंद किसे करता है और नापसंद किसे करता है। जिसे पसंद करता है उसे तवल्ला कहते हैं, जिसे नापसंद करता है उसे तबर्रा कहते हैं। तो यानी कि अगर आपने तबर्रा नहीं किया तो आपने अली को, अपने अल्लाह को पहचाना नहीं, आप उस आइडेंटिटी तक नहीं पहुंचे, आपने सिर्फ लाइक्स ले लिए, डिसलाइक्स नहीं लेंगे। यही दुनिया अभी चाहती है कि हर चीज लाइक हो, कोई डिसलाइक ना हो, लव पीस एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गुड, वो भी अच्छा वो भी अच्छा, यानी कि यजीद भी अच्छा सब अच्छे, इब्लीस भी अच्छा, क्यों, लव पीस बिल्कुल ठीक है, नो डिसलाइक्स। अल्लाह ने हर चीज को एक दूसरे की जिद बनाया ताकि एक दूसरे को पहचाना जाए। یعنی کہ جب تک کہ براعت نہیں ہوگی حب نہیں ہوگا, آپ کا حب پہچانا ہی اس کی ضد سے جائے گا. یعنی کہ حب اہل بیت کی ضد ہے لعنت ان کے دشمنوں پہ بے شمار. تو کتنا ضروری ہو گیا تبرع کرنا, کیونکہ آپ کی حب ثابت نہیں ہو رہی اس کے بغیر. اللہ نے بھی چاہا کسی چیز کو, اس کو 14 کہتے ہیں. اب جو بھی ان کے خلاف آ جائے آ گیا, اب اسی پہ تبرع کریں گے ہم, کیونکہ یہ اللہ کی پہچان ہے. تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے 3 غدیر رکھے. سب سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سے 3 غدیر ہیں. دیکھیے غدیر کی ڈیفینیشن کو ذرا سمجھ لیجئے. غدیر تو ایک علاقہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک یوم تھا جس دن یوم غدیر ہوا تھا. اور غدیر کون سا دن تھا؟ اس دن جب اعلان ولایت ہوا تھا, یعنی کہ اعلان کل, اعلان مقصد حیات, اعلان وجہ تخلیق کائنات ہو گئی. تو یہ کہا پہلی دفعہ ہوئی تھی, یہ پہلا اعلان تھا. ایک غدیر تھا انبیاء کا, ایک غدیر تھا ملائکہ کا, ایک غدیر تھا انسانوں کا. جو پہلا غدیر تھا انبیاء کا, اس غدیر میں یہ ہوا تھا کہ تمام انبیاء کو جمع کیا تھا. اس کو ہم یوم بعثت کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یوم آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ جاب پوسٹنگ آف آل دا پروفٹس, کہ اس دن جو ہے سب کو جو ہے اپنی نبوت ملی تھی. نبوت کیوں ملی تھی؟ اس لیے ملی تھی کہ 1,24,000 تھے, سب نے آ کے گواہی دینی تھی. اور گواہی کیا دینی تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, واشہد ان علیاً امیر المؤمنین وولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ. جب یہ گواہی دے دی تو نبوت ملتی گئی. تو یہی تو ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ غدیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ غدیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ غدیر والے دن بھی تو یہی ہوا تھا نا, یعنی کہ انبیاء تو غدیر کر کے آئے تھے. جب تک غدیر سے نہیں گزرو گے نبی نہیں بن سکتے. جب تک ولایت علی کو قبول نہیں کرو گے نبوت نہیں ملتی, نہیں ملتی. اور جس نے جتنی جلدی ولایت کو قبول کیا اتنا ہی عظیم مرتبہ مل گیا. یعنی کہ علی کے معاملے میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا سوچو تفکر کرو, مے بی میں گھر جا کے ذرا اس پہ تفکر کروں گا, میں ذرا پلاننگ کروں گا, میں فتوے کا انتظار کروں گا, میں ذرا جا کے اس سے پوچھوں گا, اس سے پوچھوں گا. اللہ اکبر, جب آپ کی غدیر ہوئی تھی, آپ کی غدیر کب ہوئی تھی؟ ملائکہ کی غدیر ہوئی. ملائکہ کی غدیری کیسے ہوئی؟ کہ سامنے آدم کو رکھا. جب آدم کو رکھا تو کہا کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ملائکہ سے تو کہا کہ تم سجدہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس میں روح پھونکی جا رہی ہے. کون سی روح تھی؟ یہ ولایت ہی تو تھی. کہ جب ولایت پھونکی جائے گی تو اس کے تعظیم میں, ولایت کی تعظیم میں, یا علی آج تھوڑے کم نعرے لگ رہے ہیں, کل سے مجھے لگ رہا ہے میں نان سٹاپ بول رہا ہوں, اس لیے یا علی. اللہ اکبر, کیا کروں, بس آج ایسے ہی روش ہے. موٹر آن ہے, چل رہی ہے, 4th گیئر میں ہیں, 407 پہ ہیں, نان سٹاپ ہیں. تو مائنڈ نہ کیجیے گا. دیکھیے مجھے وہ خطابت نہیں آتی جس میں نقطہ پیش کروں گا اینڈ میں اور آہستہ آہستہ اوپر لے کے جاؤں گا, پھر کلائمیکس ہوگا, پھر پیک ہوگا, پھر جملہ ہوگا, پھر آپ نعرہ لگائیں گے. میں تو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ 200 کی اسپیڈ پہ بس چلتا جاتا ہوں. جس کا دل بے قابو ہونے لگے نا, کیونکہ جب علی کی ولایت اندر بھرتی جاتی ہے نا, تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے اب روح پرواز کر جائے گی, اور دعا کر رہا ہوتا ہے کاش روح پرواز کر جائے. اب علی کو مشاہدہ کر ہی لے ہم, گواہی تو دے رہے ہیں جب سے, اب دیکھ بھی لے. لیکن اس وقت مومن بیتاب ہو کے نعرہ لگاتا ہے, نعرہ نہیں لگائے گا تو روح پرواز کر جائے گی. تو یار یہ غدیر ہو گئی. جیو یا علی, بس اسی نعرے میں تو ہماری حیات ہے. ورنہ علی کو دیکھ لیے کے لیے تو ہم بیتاب ہیں. مومن کے لیے تو یہ جسم ایک پنجرا ہے, ایک زندان ہے, کہ کب اس سے جان چھوٹے. کیوں؟ کیونکہ اپنے آقا کو ان چربی والی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اپنے آقا کو دیکھنا ہے تو اس قلب سے دیکھنا جس کو اللہ نے بنایا ہی ظرف علی کے لیے ہے. مومن کا قلب بنا ہی ظرف علی کے لیے ہے. کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو جس تینت سے ہماری جلد بنی تھی, جلد, اسی تینت سے مومن کا قلب بنا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے اندر حب علی جذب ہو سکے. بس یہ اسی لیے کہا کہ دیکھیے جب وہ نفخت فیہ من روحی, اب آدم میں روح ولایت پھونک دی گئی ہے اور میں نے اس کو اپنے دست ولایت سے بنایا ہے, اس لیے نہیں کہا کہ کن فیکون کہا تھا, ورنہ اللہ کو نہ کن کہنے کی ضرورت ہے نہ فیکون کہنے کی ضرورت ہے. کن فیکون کہہ کے بتایا کہ کوئی ہے جس کو میں نے مالک کن بنایا ہے, کوئی ہے جو میری طرف سے کن فیکون کہے گا. یاد رکھنا علی کا اللہ وہ نہیں جو جملے ادا کرے, اس کو ضرورت نہیں ہے جملے ادا کرنے کی. اس نے ایک چہرہ بنایا, ایک ہستی کو کہا یہ وجہ اللہ ہے, کہا یہ ید اللہ ہے. اے انسان تمہارا بھی تو ہاتھ ہے, میں خطا کار انسان ہوں لیکن میرا ہاتھ میرے ہر ارادے کو جانتا ہے. نہ میں اس کو حکم دیتا ہوں, نہ میں اس کو ای میل کرتا ہوں, نہ اس سے کہتا ہوں کہ ذرا یہ کر دینا, پہلے تمہیں سمجھا دوں تمہیں کیا کرنا ہے, پھر اس پانی کو اٹھا کے میرے پاس لے آنا. میں تو اس سے کچھ بھی نہیں کہتا, میں بس جبرائیل کو بھی نہیں بھیجتا میں اس کے پاس کہ ذرا جبرائیل جا کے میرے ہاتھ کو بتا دینا کہ میرے ہاتھ کو کیا کرنا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اے انسان تمہارا ہاتھ تو تمہارے ہر اشارے پہ چلتا ہے, جب ید اللہ کی بات آتی ہے تو منہ کے بل جا کے گر جاتے ہو. کیا ہے یہ؟ یا علی یا علی یا علی, یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ کو دیکھ کے کم از کم ید اللہ کو تو سمجھ لیتے یہ دنیا والے, کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تمہیں کیا چیز منع کر رہی ہے کہ اس کو سجدہ کرو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے. بات آدم کی نہیں تھی, ان دونوں ہاتھوں کی تھی. ارے جو علی بنائے اس کو تو سجدہ کر سکتے ہیں ملائکہ, ہائے علی پہ کیا پرابلم آ جاتی ہے. لما خلقت بیدی, بس چھوڑ دیجئے آگے بڑھئے. لما خلقت بیدی, جو اپنے دونوں ہاتھوں سے, دونوں ہاتھوں سے. یہ ید اللہ ولایت ہے, یہ ولایت کے ہاتھ ہیں کہ کہا ملائکہ سے اب تم تعظیم میں ولایت کے سجدہ کرو. یہ ملائکہ کی ولایت تھی. اس کے بعد آپ کی تو دو غدیر ہوئی ہیں, ایک پری لائف غدیر تھی, ایک یہاں کی غدیر تھی. وہاں کی غدیر میں کہا 2172 میں, 7172 میں, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ہم گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. کوئی ایکسیپشن نہیں تھا, کچھ نے جھوٹی گواہی دی, کچھ نے صحیح گواہی دی. کہا سب نے, جیسے اس والے غدیر میں بھی سب نے بخن کہا, کچھ بس بک بک کر رہے تھے, کچھ دل سے کہہ رہے تھے. وہاں بھی پہلی غدیر میں 7172 تفسیر البرہان امام محمد الباقر الصلاۃ والسلام علیہ وسلم محمد, کہا کہ یہ کیا پوچھا تھا الستو بربکم. کہا کہ اس دن تمام صلب آدم سے تمام روحوں کو, ہم سب تھے وہاں پہ, ہم کیا یہ ہر ملک کا, ہر علاقے کا, ہر صدی کا انسان جو قیامت تک آنا ہے, سب کے سب, پتہ نہیں کتنے ہوں گے, 100 بلین ہوں گے, کتنے ہوں گے, سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الستو بربکم, سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے. کیا محمد میرا نبی نہیں؟ بے شک وہ تیرا نبی ہے. کیا علی میرا ولی نہیں؟ بے شک وہ تیرا ولی ہے. سب نے کہہ تو دیا لیکن جھوٹے بھی تھے ان میں, جھوٹے بھی تھے ان میں. اللہ نے کہا اب جھوٹوں کو کیسے پیش کریں, اس کے لیے دنیا میں آئیں گے, اب سب یہاں پہ آئیں گے. اب یہاں پہ پتا چلے گا کس نے وہاں پہ سچی گواہی دی تھی. اب یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا, یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا. وہ کہنے لگے کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی کہ آخر میں ولایت کو لے کے آتے؟ ہائے پہلے کیوں نہیں لے کے آئے؟ پہلے ظرف بنانا تھا, پہلے ضروری تھا کہ ذرا طہارت تو سیکھ لو, پہلے سیکھو کہ دیکھو یہ شراب نہیں پیتے, देखो ये हराम गोश नहीं खाते, हलाल गोश खाया करो, देखो निकाह करके औलाद पैदा किया करो, देखो वजू करके ताहिर रहा करो, देखो इस तरह से नमाज पढ़ते हैं, इस तरह से जक़ात देते हैं, इस तरह से जिहाद करते हैं, इस तरह से खुम्स देते हैं, अभी भी तुम पाक नहीं हुए, 23 साल हो गए, मेरे साथ हिजरत भी कर ली, जिहाद भी कर लिया, अभी भी तुम तैयार नहीं हो, चलो एक और अमर है, हाँ अगर हज करोगे ना और कबूल हो जाएगा तो अल्लाह जो है ना तुम्हें जिस तरह से शिकम मादर से निकाला था ना, ऐसे तुम मक्के से निकलोगे, तो जरा चलो मेरे साथ, आखिरी नबी कह रहे हैं चलो मेरे साथ आके सब हज करो। अब मैं जा रहा हूं, तमाम मुसलमानों को दावत दी, सब आए हज किया, जब हज कर लिया तो नबी ने कहा अब तो हुज्जत तमाम हो गई, अब कहा जाएगा मन कुंतु मौला फहादा अली उन मौला, अब देखा जाएगा कि कौन मानता है और कौन नहीं मानता है। तो बस यही थी, ये चौथी गदीर थी, मैंने तो 3 कहा था, यहां तो 4 हो गई। एक सलावात पढ़ दीजिए, आज मैं नॉन स्टॉप चला हूं, मैं खाली 40-50 मिनट तो, लेकिन आप सब लोग मैं खाली ठीक लग रहे हैं, बिल्कुल सही। एक और सलावात पढ़ दीजिए, मोहम्मद वाजिल फरजो। हाँ, आज उस हस्ती का गम मनाना है जिसके वजूद से पता चलता है कि करीम किसे कहते हैं, जिससे पता चलता है कि हुसैन कितना करीम आका है। कोई भी ना उम्मीद हो जाए हुसैन से तो हजरत हुर का किस्सा सुन के कोई हुसैन से ना उम्मीद ही नहीं रख सकता। जितना भी आप दूर हो जाएं अपनी जिंदगी में, जितनी खताएं गुनाह हो जाए, जो भी हो जाए, जब आप हुर को देखेंगे ना, हुर को, तो आपको पता चलेगा कि हुसैन बड़ा करीम आका है, करीम इब्ने करीम, जो उस हुर से कहे कि ए हुर, तेरी माँ ने तुझे आजाद कहा था, तेरी माँ ने तो तुझे आजाद पैदा किया था, तू गुलाम क्यों हो गया। कहा कि हुर शबे आशूर अपने खैमे में बड़ा परेशान था, बहुत परेशान था, उस परेशानी में टहलता जा रहा था कि भाई आ गया। भाई ने आके कहा, ए हुर क्या हुआ, कल जंग से डरते हो क्या, क्या अब्बास होंगे इसलिए डरते हो। हुर ने कहा कि नहीं, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन तुम्हें आवाज आ रही है इन बच्चों की। हुर का खैमा करीब था, हुर के खैमे तक अल अतश की सदाएं आती थी। हाय, ये जो करबला के इम्तिहान थे ना बच्चों के, ये समझ में नहीं आ सकते। कभी किसी वालिदैन ने अपने बच्चों से प्यास की सदा सुनी है? कितनी करीमी है हम पर, कितनी आसान गुजरी है जिंदगी, अगर कभी छोटे बच्चों ने आके नहीं कहा कि बाबा मैं प्यासा हूं कुछ पानी दे दीजिए, और एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 1 घंटे तक सोचिए आपके बच्चे कह रहे हो अल अतश अल अतश, सोचिए पूरा दिन कहते जाए अल अतश अल अतश, सोचिए 2 दिन गुजर जाए, 3 दिन गुजर जाए, कैसे आप उन बच्चों को तसल्ली देंगे। आप समझ रहे हैं हुर क्या सोच रहे थे, आप समझ रहे हैं, 3 दिन से हुर सुन रहे थे अल अतश अल अतश अल अतश। कैसे हमारी फितरत में है कि जब कोई प्यासा होता है फौरन पानी पिलाना चाहते हैं, प्यासे की हालत देखी नहीं जाती। कभी आपने किसी 6 माह को देखा है अपने सामने प्यासा, ऐसा प्यासा कि होंठ खुश्क होना शुरू हो जाए, चेहरा जो है वो मुरझाने लग जाए। कभी फूल को देखा है मुरझाते हुए फूल को? हाय, ये तो असगर की माँ से पूछो कि फूल जब सामने प्यास के मारे जबान निकल रही थी, कभी अंदर जाती थी कभी बाहर आती थी, अल अतश अल अतश, एक सदा नहीं थी। आप जानते हैं बाज़ रिवायात में 50 से ज़्यादा बताएं छोटे छोटे बच्चे, बाज़ रिवायात में 60-65 बताएं जो उन खैमों में बच्चे थे, जो कम सिन थे, कम सिन से मुराद है लाइक 7 ईयर्स एंड अंडर, ऐसे थे बच्चे जो अल अतश कर रहे थे। ना जाने कितने तो घोड़ों के समोतले शाम गरीबा आ गए थे, कितनों को बीबी जैनब और आकाजादी उम्मे कुलसूम ने उठा के रखी हैं लाशें, वो देखते जाते थे कौन बच्चा बच गया है कौन नहीं बचा है। कितनों को तो सज्जाद ने बंदे हाथों से, जो बेकजावा ऊँटों से माँ की गोदों से गिर जाते थे, उनको उठा के दफन करते जाते थे। इन छोटे छोटे बच्चों की कब्रें जो हैं वो रास्ता बता रही हैं, औलाद जहरा की कब्रें रास्ता बता रही हैं। इस काफले ने क्या रास्ता इख्तियार किया था कि जब हुर सुन रहे हैं अल अतश अल अतश अल अतश, हुर से बर्दाश्त ना हुआ। जब हुर से बर्दाश्त ना हुआ, हुर ने अपने भाई से कहा, अब मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अब हुसैन की तरफ, मैं अब और नहीं रुक सकता। कहा मैं जा रहा हूँ। कहा तुम चाहो तो यही रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ। बेटे से और भाई से कहा, हुर चला। बेटे और भाई ने कहा, वाह भैया खूब किया आपने, जब तक जहन्नुम में थे तो हमें साथ रखा, अब जन्नत की तरफ जा रहे हो तो हमें नहीं लेके जा रहे, हम भी साथ चलेंगे। हुर ने कहा, हाँ चलो चलो, लेकिन देखो मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं ऐसे नहीं जा सकता। ये जो हाथ है ना हाथ, इन्होंने हुसैन के घोड़े की रकाब को थामा। हुर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये जुर्म। कहा इन्होंने हुसैन के रकाब को थामा था, मेरे हाथ बांध दो, मेरे हाथ बांध दो। कहा कि तुम्हें पता है कि इन आंखों ने हुसैन से आंखें मिलाई थी, इन आंखों पे पट्टी बांध दो, पट्टी बांध दो, अब चलो, अब चल रहे हैं, अब हुर जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, साथ भाई और बेटा हैं, हुर जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि ना जाने क्या होगा। हुर की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कोई छोटा बच्चा सामने ना आ जाए, कि अगर किसी छोटे बच्चे ने आके कहा इशारा करके कि यही था, यही था जिसने हमें नहर से हटाया था। हुर से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हुर बस यही चाह रहा था कोई बनी हाशिम का बच्चा ना आ जाए सामने। हुर जा रहे थे आगे। कहा कि पता नहीं क्या होगा, मैं अपने आप को आका के कदमों में गिरा दूंगा और मैं कहूंगा मौला जो भी सजा देनी है दीजिए, इन हाथों को कलम कर दीजिए जिन्होंने आपकी रकाब को थामा था, अरे सर को कलम कर दीजिए, जितने टुकड़े करने हैं जो सजा देनी है हुर को मंजूर है। बस काश काश इतना कह दे कि ए हुर शायद तुम्हारी माफी हो सकती है, शायद तुम्हारी माफी हो सकती है। हुर आगे जा रहे हैं, पता नहीं उम्मीद कितनी है, लेकिन एक वक्त आया कि भैया कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुर ने कहा क्या देख रहे हो भैया? कहा मैं देख रहा हूँ। कहा क्यों आ रहा है, क्या कोई तलवार लेके आ रहा है, नेजा लेके आ रहा है? कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कहा अली अकबर आ रहे हैं? कहा क्या कर रहे हैं? कहा हाथ फैलाया आ रहे हैं, सीने से लगा ले आ रहे हैं। हुर को यकीन नहीं आया, कहा आगे चलो थोड़ा और आगे गए। बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब हुर ने कहा क्या हुआ, अब कौन आया? कहा कोई और नहीं, अरे अब्बास गाजी जरी आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। अब थोड़े और बड़े, हुर की हिम्मत थोड़ी सी और बड़ी, अब कदम थोड़े तेज हुए, अचानक दोनों रुक गए, भाई और बेटा रुक गए, रोने लगे अल्लाहु अकबर, हाय करीम इब्ने करीम, ए हुर तेरी किस्मत, यकीन नहीं आता क्या हुआ। कहा हुसैन आ रहे हैं, हुसैन खुद आ रहे हैं। अब जो हुसैन आगे आए, हुर को सीने से लगाया है, हुर कदमों में गिर गया। कहा नहीं तेरी जगह यहाँ नहीं है हुर, आ खड़ा हो। कहा आका मुझे माफ कर दीजिए। कहा हुर तूने क्या ये हाथ बांध रखे अपने, अरे जरा ये हाथ तो खोल। कहा ये क्या पट्टी बांध रखी है, अरे जरा इस तरफ तो देख, अब जो सीने से लगाया। उन्होंने कहा मौला क्या मुझे माफ कर दिया? कहा कि ए हुर मैं तुम्हें क्या माफ कर दूंगा, हुसैन शर्मिंदा है, हुसैन शर्मिंदा है। हुर ने कहा आका ऐसी बात ना कीजिए, ऐसी बात ना कीजिए। कहा नहीं है आज हुसैन, पता है क्यों? कहा जब तू मेरा दुश्मन बन के आया था तो हुसैन ने तुझे पानी भी पिलाया था, खाना भी खिलाया था, अरे आज तो तू दोस्त और भाई बन के आया है, लेकिन हुर क्या करूं अब खेमों में पानी नहीं रहा। उनने कहा मौला शर्मिंदा ना कीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हाँ आजादारो, अब सुबह आशूर हुई, हुर बेताब थे, हुर बार बार हुसैन के पास आ रहे थे, कह रहे थे आका इजाजत दीजिए, आका आका आप मुझे सबसे पहले मुझे इजाजत दे दीजिएगा। हुर इतना बेताब क्यों है? बस वही बात थी कि हुर ये नहीं चाहते थे कि कोई बच्चा आ जाए सामने। बनी हाशिम के बच्चों की अल अतश सुन सुन के हुर का दिल तड़प चुका था। हुर ने कहा इजाजत दीजिए, हुर को इजाजत मिली, हुर को इजाजत मिली। गए जंग के लिए, वासले जहन्नुम किया कई को, जाहिर है बहुत बहादुर थे, बहुत शुजा थे। एक एक वक्त आया कि ऐसे वार पड़े कि हुर जीन से जमीन पे आ गए। जब जमीन पे आ गए तो ऐसा जख्म लगा था कि खून का फवारा जारी था। लोग आगे आए सर कलम करने के लिए, سر قلم کرنے کے لیے, لیکن ابھی حسین اور حسین کے ساتھ عباس ہیں, ابھی عباس ہیں, اب دو شیر اترے, اب دو اسد اللہ اترے, اور جب اترے میدان میں سارے بھاگ گئے, سارے جب دور گئے تو حر کے قریب آ گئے حسین. حر کے قریب آ کے سر کو زانو پہ رکھا حسین نے. حر نے کہا, آقا یہ میرے سر کی جگہ نہیں ہے, میرے سر کو اپنے زانو پہ نہ رکھیے, میں بہت گنہگار ہوں. حر کے خون کو دیکھ کے ایک رومال باندھا, رومال باندھ دیا. حر نے کہا کہ مولا, مولا اب میں جا رہا ہوں, مولا مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے, مولا بس ایک ہی سوال ہے آپ سے, مولا کیا میں امید رکھ سکتا ہوں کہ آخرت میں میری کچھ بخشش ہو جائے گی؟ اے حر تجھے پتہ نہیں, تجھے پتہ نہیں کہ یہ جو رومال میں نے تیرے باندھا ہے یہ کسی اور کا رومال نہیں ہے, ارے یہ میری ماں زہرا کا رومال ہے, تیری بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ حر نے کہا, ہاں آقا میں سامنے دیکھ رہا ہوں رسول اللہ آ رہے ہیں, ارے مولا ارے آ رہے ہیں, ارے امام حسین, آقا یہ کون ہے سیاہ پوش بی بی جو پیچھے کھڑی رو رہی ہے؟ اے حر یہ کوئی اور نہیں, احترام میں کھڑا ہو جا, ارے یہ میری ماں زہرا ہے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مَاتَمِ حُسَيْنِ.